कि वही है सच्चा जिसने अहंकार को मारा। योगी वही है सच्चा जिसने अहंकार को मारा हो, अहंकार को मारा हो। पीकर जहर सभी के दिल का, पीकर जहर सभी के दिल का, जीवन खूब सवारा हो, जीवन खूब सवारा हो। योगी वही है सच्चा जिसने अहंकार को मारा हो, अहंकार को मारा हो। विघ्नों से ना घबराए, हंस हंस के सह जाए। विघ्नों से ना घबराए, हंस हंस के सह जाए। प्राणों की दे आहुति सबके प्राण बचाए। जीवन में सीखा हो हंसना, जीवन में सीखा हो हंसना, काम को ललकारा हो, काम को ललकारा हो। योगी वही है सच्चा जिसने अहंकार को मारा हो, अहंकार को मारा हो। जीत के द्वंद में कभी निराश न होता है, हार जीत के द्वंद में कभी निराश न होता है। जीवन के चाहे मेघों को खुशी खुशी भर लेता है। आंचल में बसी हो करुणा, आंचल में बसी हो करुणा, मुख में ज्ञान की धारा हो, मुख में ज्ञान की धारा हो। योगी वही है सच्चा जिसने अहंकार को मारा हो, अहंकार को मारा हो। पीकर जहर सभी के दिल का, पीकर जहर सभी के दिल का, जीवन खूब सवारा हो, जीवन खूब सवारा हो। योगी वही है सच्चा जिसने अहंकार को मारा हो, अहंकार को मारा हो। योगी वही है सच्चा जिसने अहंकार को मारा।
ओम शांति।
इस वर्ष में हमारे परम प्रिय बाप दादा ने ये कहा हुआ है कि हमारा विशेष ध्यान, हमारे सामने विशेष लक्ष्य यही रहेगा कि हमारी स्थिति योग युक्त, हमारे कर्म योग युक्त हों, हमारा आहार विहार विचार आचार सभी जैसे योगी जीवन में होता है वैसा होना चाहिए। क्योंकि बाबा ने कहा हुआ है कि बच्चे युक्ति से मुक्ति मिलती है, ये बाबा के सेंट्रल महावाक्य हैं, केंद्रीय। युक्ति से मुक्ति मिलती है। वो युक्ति कौन सी है जिससे मुक्ति मिलती है, वो बाबा ने हमें बताया है कि वो योग युक्त होना यही युक्ति है, इसी से मुक्ति मिलती है। तो सारा जो अपना अध्ययन है, ये पढ़ाई है, स्टडी है, ये इसी बात से संबंधित है कि वो युक्ति हम अधिकाधिक अपने जीवन में कैसे अपनाएं, जिससे विकारों से भी मुक्ति मिले, दुख अशांति रोग शोक इन सब से मुक्ति मिले, जिसे हम जीवन मुक्ति कहते हैं। उसी को ही संक्षेप में कहा गया है कि युक्ति से मुक्ति मिलती है, या बाबा ने कहा है विधि से सिद्धि मिलती है। तो वो विधि क्या है, योग कैसे लगाना चाहिए, आत्मा के स्वरूप में कैसे स्थित हों, परमात्मा से हम अपना कनेक्शन कैसे जोड़ें, संसार में रहते हुए जो सुख शांति में जीवन है उसको जीने की विधि क्या है। जैसे अभी भी बाबा अपने उस दिन की अव्यक्त मुरली में बता रहे थे कि योग एक विज्ञान है, योग एक जीवन की पद्धति है, जीवन का तरीका है, तो यानी विधि है। आजकल पाश्चात्य देशों के लोग भी कहते हैं कि लाइफस्टाइल हमारा कैसा हो ये एक आवश्यक बात है, इसको जानना। तो वो विधि क्या है अपने जीवन को श्रेष्ठ बनाने की, स्वपरिवर्तन की, दूसरों का कल्याण करने की, उनकी सेवा करने की, ये सब बातों की विधि हमें बाबा बताते हैं। हमारा सारा ज्ञान क्या है, एक शब्द में ये विधि है। बोलने की विधि क्या हो, बाबा कहते हैं कम बोलो, मीठा बोलो, धीरे बोलो, ये बोलने की विधि है। कैसे देखो, आत्मा की दृष्टि से देखो, ये देखने की विधि है। ऐसे बाबा ने नेगेटिव थिंकिंग मत करो, पॉजिटिव थिंकिंग करो, ये सोचने की विधि है। तो हर एक बात की बाबा ने विधि बताई है या युक्ति बताई है, इनको ठीक कैसे करो, इसकी ट्रांसफॉर्मेशन कैसे करो। तो इस विधि से सिद्धि होगी और इस युक्ति से मुक्ति होगी। कितना थोड़े से शब्द में बाबा, जिसको कहा जाता है गागर में सागर भरना, वैसे ही सारे ज्ञान को बहुत थोड़े से शब्द में बताते हैं। तो जिसे हम योग तपस्या कहते हैं, इससे पहले हमें ये जान लेना जरूरी है कि योग हम कहते किसे। तो बाबा ने बहुत न्यारे और प्यारे शब्दों में योग की व्याख्या की हुई है कई तरीके से, जिनमें से चार पांच जो हैं वो मुख्यतम हैं, उनमें से विशेष हैं। एक तो बाबा ने कहा हुआ है लगन में मगन होना ही योग है। ये व्याख्या किसी ने नहीं की योग की। लोग तो कहते हैं योग चित्त की वृत्तियों के निरोध का नाम है, पतंजलि ने राजयोग में ऐसे कहा, और कोई अपने अपने रीत से योग को डिफाइन करते हैं, योग की व्याख्या करते हैं। लेकिन बाबा ने क्या कहा हुआ है, लगन में मगन होना ही योग, इसका नाम तपस्या है। जिसको अपनी भाषा में लोग कहते हैं कि अचल अटोल हमारी स्थिति हो, समाधि हो, तो वो क्या चीज है कि मन जो है उस एक परमात्मा में, एक शिव बाबा में मग्न हो जाए, उसके रस में डूब जाए, उस आनंद में या प्रेम में विभोर हो जाए। लगन में मगन होना ही योग है। दूसरा बाबा ने कहा हुआ है याद की यात्रा का नाम योग है। योग जो है वो याद की यात्रा का नाम है। लोग बेचारे जाते हैं अयोध्या में राम जन्मभूमि पर, या काशी में, या मथुरा में, या वृंदावन में, या जगन्नाथपुरी में यात्रा करने। तो बाबा ने हमें कितना सहज बता दिया, पिछले दिन भी बता रहे थे ना कि आप जाते हो परम धाम में, कितना सेकंड लगता है, कितना खर्च होता है, व्यक्तवाणी में बता रहे थे ना बाबा। तो आप तो सबसे बड़े वैज्ञानिक हो, दूसरे वैज्ञानिक कितनी एनर्जी, कितना पैसा खर्च करके रॉकेट को भेजते हैं। तो बाबा ने कहा वो सूर्य तक भी नहीं पहुंच सके और आप कहां चले जाते हो। तो वो बाबा ने कहा है एक बहुत ही मधुर शब्द में, बहुत गंभीर है ये बात जो बाबा ने थोड़े से शब्दों में कही है, कि याद की यात्रा का नाम ही योग है। ये कहीं किसी ने नहीं कहा। वो तो मन को नील स्टेज में ले जाना चाहते हैं कि कोई थॉट आए ही ना, विचार आए ही ना, एकदम घोड़े को खूंटी से बांध के बिठा देना चाहते हैं, उठे ही ना वहां से, भागने की बात तो छोड़ दो, चारा अपने पल्ले से खिलाओ उसको और वहीं पर बांधे रखो उसको। तो याद की यात्रा का नाम ही योग है, ये बाबा ने कहा है। तीसरा बाबा ने कहा है कि सर्व संबंध बाप से जोड़ना, ये योग है। जिसको भक्ति मार्ग में आप कहते आए कि तुम्हें माता च पिता तुम्हें, तुम्हें बंधु च सखा तुम्हें, आज भी मुरली में था ना कि वारिस किस किस ने बनाया है, कौन उससे वर्षा लेना चाहता है, ये वारिस किस किस ने बनाया, आज सब ने खड़ा किया था। दादी जी ने पूछा था ना, तो ये सब संबंध माता पिता सखा स्वामी या आत्मा के सब संबंध जो गाते आए हम भक्ति मार्ग में, अब उनको जान के उनके साथ जोड़ना, ये योग है। बाबा ने ये नई व्याख्या बताई है कि मन उससे उस प्यार से जुट जाए। और फिर उसके साथ साथ बाबा ने ये कहा है कि योग कनेक्शन का नाम है, कनेक्शन। शिव बाबा से आत्मा का कनेक्शन हो जाए, आत्मा का परमात्मा से कनेक्शन ही योग है। योग की डेफिनेशंस दी हैं, लेकिन विशेष रूप से हमेशा मन का स्वभाव है कि थोड़ी बातों पर वो केंद्रीभूत हो पाता है, ध्यान में रख पाता है, अधिक बताओ तो ओवरफ्लो हो जाता है। इसलिए ये चार ही काफी हैं। ये जो अभ्यास करेंगे आप, अगर इन चार बातों पर ही मन अपना टिकाए रखें, इसको चेक करें कि हमारे संबंध ठीक हैं, हमारा कनेक्शन लगा हुआ है, हम लगन में मगन हैं, हम याद की यात्रा कर रहे हैं, तो समझो कि आपकी तपस्या हो रही है। और अगर नहीं तो समझो कि तपस्या नहीं हो रही। अब सवाल यह है कि चाहते तो सब हैं कि हम लगन में मगन हो जाएं, इसीलिए तो ये सारा ज्ञान लेते हैं। क्योंकि जब मगन होते हैं शांति मिलती है, आनंद मिलता है, बाबा का वरदान मिलता है। कौन चाहता है कि हम बाबा की याद में ना रहें। किसी ने कहा है कि मक्खन खाते हुए किसके दांत टूटते हैं, किसके दांत टूटते हैं, उसने कहा मक्खन खाते हुए। लेकिन मैं तो कहता हूं जिसके टूटे हुए हों वो भी खा सकता है मक्खन, एक ऐसी चीज है। टूटते तो नहीं है, टूटे हुए अगर पहले से ही हों तो भी मक्खन खा ले तो ठीक है। तो ये योग जो है ये तो मक्खन है, शक्ति देने वाली चीज है। किसको ये कठिन, किसको ये भारी लगता है, ये कोई दुस्साहस काम नहीं है ये इस प्रकार का। लेकिन सवाल यह है कि अगर लगन ही ना रहे तो मगन किस में रहेंगे, अगर याद ही ना हो तो यात्रा क्या करेंगे, अगर संबंधी भूल जाए तो सब जोड़ोगे किससे, अगर कनेक्शन ही टूट जाए। मान लो टेलीफोन आपके पास भी है, जिसको आपने टेलीफोन करना है टेलीफोन का इंस्ट्रूमेंट वहां भी है, और कनेक्शन में ही कोई गड़बड़ हो जाए तो लगेगा कैसे योग। तो तपस्या सब करना चाहते हैं, कनेक्शन भी जोड़ना चाहते हैं, संबंध भी जोड़ना चाहते हैं, मगन भी होना चाहते हैं, याद की यात्रा भी करना चाहते हैं। लेकिन सवाल यह है कि याद भूल जाती है, वो लगन पूरी एक जैसी चलती नहीं रहती, याद की यात्रा करते करते रास्ते में रुक जाते हैं, संबंध जोड़ते जोड़ते देह के साथ फिर संबंध जोड़ लेते हैं, देहधारियों के साथ फिर संबंध जोड़ लेते हैं, तो वो तपस्या जो है भंग हो जाती, तपस्या पूरी तरह से हो नहीं पाती। तो ये कैसे किया जाए कि हमारी लगन बनी रहे, ताकि हम उसमें मगन हों, हमारी याद स्थिर रहे, ताकि हम यात्रा हमारी सफल हो। लोग कहते हैं ना यात्रा आपकी सफल हो, जो टिकट भी मिलता है एयर का या रेल का आजकल उस पर लिखा रहता है आपकी यात्रा सुखद हो या आपकी यात्रा सफल हो। तो याद की यात्रा भी सफल हो कह देना तो अलग बात है, हो कैसे, ये एक मेन क्वेश्चन है। तो उसमें जैसे याद के लिए तैयारी की जाती है, तपस्या के लिए भी तैयारी करनी होगी हमें पूरे रूप से। जैसे आप अपनी रिजर्वेशन करा लेते हैं, कन्फर्मेशन करा लेते हैं, सीट का नंबर ले लेते हैं, सामान क्या ले जाना है वो तैयारी कर लेते हैं, तो बाबा ने उसके लिए बहुत पहले से तैयारी हमारी करा दी हुई है वास्तव में अगर देखा जाए। क्योंकि बाबा ने कहा है तपस्या करते हैं तो किस आसन पर बैठते हैं, तो तपस्या वाले आपको मालूम है भक्ति मार्ग में तो आसन बना मिलते हैं ना जिस पर बैठते हैं लोग, तो हमारा आसन कौन सा है, बाबा ने कहा था पद्म आसन है। पिछले दिन भी कहा कि पद्म आसन का भी नाम है और पद्म जो है पुष्प का भी नाम है, और पद्म पद्मा पद्म कमाई भी होती है, पद्म जो है वो धन की भी गिनती का नाम है, तो पद्म आसन पर आप बैठेंगे तो पद्मा पद्म कमाई होगी, कहा ना बाबा ने व्यक्तवाणी में पिछले दिनों। पहले हम भक्ति मार्ग में देखते थे कि सरस्वती जी कमल पुष्प पर खड़ी हुई है या नारायण जी कमल पुष्प पर खड़े हुए हैं, तो हम समझते थे कमल पुष्प तो फिस जाना चाहिए, इतने बड़े कद का भाई या बहन कोई खड़ा हो कमल पुष्प पर, और वो भी पानी पर वैसे के वैसे ही खड़ा हो 80 किलो का आदमी, और अगर वो खड़ा हो जाए कमल पुष्प के ऊपर तो उसका तो कचूमर निकल जाएगा, तो आश्चर्य होता था ये बात क्या है, माजरा क्या है। तो यहां आने से मालूम पड़ा कि ये तो प्रतीक है, सिंबल है कि वो कमल पुष्प के समान उनका जीवन था, जल में रहते हुए कमल जैसे न्यारा रहता है वैसे ही वो खड़े रहे या बैठे रहे, तभी वो कमल जो है वो फिसफिसता नहीं है, क्योंकि ये प्रतीक है। तो वो आसन, और जो हठ योग वाले हैं उन्होंने पद्म आसन अपना निकाल लिया बैठने का, चाहे कोई मोटा आदमी हो टांग पर टांग चढ़ा भी ना सके तो उसको भी कहेंगे पद्म आसन करो। तो बाबा ने हमें क्या बताया कि ये मन की या बुद्धि की बात है, पवित्रता पूर्वक हमारा जीवन हो, इस संसार में रहते हुए हम कमल फूल के समान रहे, यही हमारा पद्म आसन है। तो ये बातें सब बाबा ने स्पष्ट की हुई हैं, लेकिन कुछ बातें ऐसी हैं जिससे ये हमारी लगन या हमारी याद या हमारे संबंध या हमारे कनेक्शन ये टूट जाते हैं, तभी वो हमारी तपस्या चल नहीं पाती। तो वो कौन कौन सी बातें हैं और उसके लिए बाप दादा ने टाइम टू टाइम क्या कहा हुआ है, वो जो कुछ मैंने विचार किए हैं वो आपके सामने रखता हूं। उसमें से सबसे पहले तो आप देखेंगे आलस और अलबेलापन, आलस और अलबेलापन। बाबा ने बहुत मुरलियां इस पर चलाई हुई हैं और कहा है कि बच्चे ये सबसे बड़ा शत्रु है। जब विकारों का भी बाबा कहते थे काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, तो बाबा हमेशा कहते थे आलस को क्यों भूल जाते हो। तो कई लोग उसको कहते हैं छठा विकार, तो बाबा कहते हैं नहीं, कई दफा ये पहला विकार बन जाता है, क्योंकि ये दूसरे विकारों को भी छोड़ने में दिक्कत डालता है। क्लास नहीं करोगे आलस के मारे तो पांच विकार भी जाएंगे कैसे। तो आलस एक बहुत बड़ा शत्रु है। और बाबा ने कहा है ये जो विज्ञान वाले हैं वो साधन बनाते हैं, साधनों का प्रयोग देते हैं, और आप लोग क्या करते हैं, आप जो योग रूपी विज्ञान करने वाले हैं साधना करते हैं। तो ये जो साधना है क्यों साधना कहा गया है, तो योग आसान लेकिन फिर भी इसको साधना क्यों कहा गया है, क्योंकि इसमें ये तकलीफ देते हैं, ये दिक्कत डालते हैं, रुकावट डालते हैं, आलस अलबेलापन। साधक जो होगा, जो साधना करने वाला होगा, वो आलस को एक तरफ करके सर्दी में गर्मी में बारिश में तबीयत कभी ऊंची नीची ठीक होगी कभी नहीं ठीक होगी, कभी कोई और विघ्न पड़ेगा, तो वो उन सब का सामना करके साधना में कमी नहीं रखेगा। इसलिए इसको बाबा ने साधना कहा। कोई साधन मिलेगा नहीं मिलेगा, अच्छा आज बस नहीं मिली या कोई साधन नहीं मिला तो क्लास ही छोड़ दी या मुरली सुनी ही नहीं, नहीं, वो साधन नहीं मिला तो साधना करने वाला जो होगा कोई ना कोई रास्ता अपना निकाल लेगा, साधना में जो विघ्न आएंगे उन विघ्नों को विनाश करेगा। तो बाबा ने एक मुरली में कहा था कि लगन में रहोगे तो विघ्न विनाश होंगे, ये बाबा ने फार्मूलाज बताए हुए, जैसे नानी अम्मा दादी अम्मा बताती है ना, जुकाम हो तो फलां चीज का काढ़ा पी लिया करो, या फलां गला खराब हो तो बेसन का पूरा बना के खा लो, मिसाल के तौर पे, ये उनके टोटके या नुस्खे होते हैं। तो बाबा की जितनी वाणियां हैं साकार में या अव्यक्त वाणियां, वो सब बीमारियों की औषधियां हैं। एक एक जो बाबा का वाक्य या महावाक्य है आप देखेंगे वो हमारे मन की किसी न किसी बीमारी के लिए औषधि है। वो जिसको मुरली के आप पॉइंट कहते हैं उनको हम रतन भी कहते हैं, भाई ज्ञान एक खजाना है, धन है, रतन है, लेकिन बाबा कहते हैं ज्ञान औषधि भी है, जड़ी बूटी भी है। तो ज्ञान का आप एक सेंटेंस बोलिए कोई सा भी किसी भी वाणी में से, तो मैं आपको बताऊंगा ये फलां बीमारी की दवाई है। तो ये जैसे डॉक्टर का मेटीरिया मेडिका होता है, एक किताब होती है जिसमें उनको पढ़ाया जाता है कौन सी बीमारी की कौन सी दवाई है। तो ये बाबा ने जितना हमें ज्ञान दिया है ये हमारे मन की जो उल्टी चाल है, टेढ़ी चाल है, जो जन्म जन्मांतर से अनेक हमारे रोग लगे हुए हैं, मानसिक नैतिक आध्यात्मिक, उनकी ये औषधियां हैं, अमोघ औषधियां हैं। तो बाबा ने ये एक बहुत सिंपल हमें दवाई, एक टेबलेट एक कैप्सूल ये बताया हुआ है। बहुत सारी दवाइयां बाबा की कैप्सूल फार्म में है, कई होम्योपैथी की गोलियों की तरह से है, कई काढ़े हैं बाबा ने बताए हुए, कई खमीरे हैं, कई माजून हैं, बाबा की जो दवाइयां हैं कई अर्क हैं, कई शरबत हैं बाबा की, जो अगर आप देखोगे पॉइंट्स जो हैं वो भी भिन्न भिन्न दवाइयों की तरह से हैं। तो इसके लिए बाबा ने क्या कैप्सूल बताया हुआ है, विघ्नों को दूर करने के लिए, लगन में रहोगे तो विघ्न दूर हो जाएगा। बाबा का शब्द जो है वो अमोघ है, बाबा का वचन है, आप करके देखो। वो जो लुकमान हकीम था, बहुत बड़ा वैद्य, धनवंतरी माना जाता है आयुर्वेद में और लुकमान माना जाता है यूनानी में, सबसे बड़ा हकीम जो था यूनानियों का, फादर, उनका फादर ऑफ ग्रीक मेडिसिन, वो लुकमान नाम का हुआ है। और जो आयुर्वेद का है धन्वंतरी आमतौर से कहते हैं कि भाई वो अमृत लाया था, ऐसे बोलते हैं। बाबा की जो बात है उनकी औषधि कभी गलत भी हो सकती है, लेकिन बाबा की जो कही हुई औषधि है, अगर टाइम मिले हम आपको जीवन के अनुभव बताने लगे कि कैसे, मान लो हमारे सामने फलां विघ्न आया और उस विघ्न में हमने लगन को अपनाया तो वो विघ्न कैसे चला गया, करके देखिए। किसके जीवन में कोई विघ्न हो ठीक तरह से आप निश्चय पूर्वक, ऐसा नहीं कि हिलते रहो, जैसे भक्ति मार्ग में करते हैं पहले हनुमान की पूजा करेंगे, हनुमान जी बचाओ, हनुमान जी बचाओ, मैं डूब चला हूं, नहीं आया हनुमान जी, फिर कहेंगे राम जी आप आ जाओ, राम जी आप आ जाओ, समझेंगे हनुमान कहीं किसी काम में बिजी होगा, चलो शायद राम के पास फुर्सत हो उसको बुला लो, हैं? राम जी नहीं आया फिर किसको बुला लेंगे, किसी और को, कृष्ण जी को कहेंगे कृष्ण जी आ जाओ, कृष्ण जी नहीं आएंगे राधिका को ही बुला लेंगे, कहेंगे वो शायद सिफारिश कर दे। तो वो एक में निश्चय नहीं उनका होता ना, क्योंकि उनको पता नहीं परमात्मा कौन है। जब वो जाते हैं अगरबत्ती और धूप लेकर अपने घर में या मंदिर में, जितने देवी देवताओं के चित्र लगे हुए हैं सबको अगरबत्ती सुंघवाएंगे ताकि हर एक के नाक में सुगंधी जाए, ऐसा ना हो कोई देवी देवता हमसे नाराज हो जाए, काम खा का ही मुसीबत पड़ जाए, एक एक को खुश कर बैठे और एक को ही नाराज हो जाए, क्योंकि उनको पता नहीं ये नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार कौन कौन है, वो सबको ही भगवान समझते हैं, उनको ये मालूम नहीं कि भाई ये डिपार्टमेंटल स्टोर जो हमने बना रखा है सब देवी देवताओं का, इनमें से मुख्य कौन है, देवों का देव परमात्मा कौन है, और हमको तो पता है। और जब हमको मालूम हो गया कि शिव बाबा वही सब देवी देवताओं को भी जो इस संगम के समय में जब वो अंतिम जन्म में होते हैं अपने साधारण रूप में, सब देवी देवता वही वरदान देकर इन सबको देवी देवता बनाने वाले हैं, और ये सब इन्हीं महावाक्यों पर जितना कोई चला है उतना उसने पद प्राप्त किया है, तो ये फेथ की बात है। अगर आप निश्चय करें लगन से विघ्न दूर होगा, बिल्कुल 100% गारंटी है कि लगन से विघ्न दूर होगा, इसमें कोई शक की बात नहीं। तो इसलिए जो जो बात बाबा ने कही हुई है कि बच्चे ये आलस और अलबेलापन, ये एक मुरली में बाबा ने कहा था कि आलस आपको धीरे धीरे दूर कर देगा, शिव बाबा से दूर कर देगा। उसके हर एक के शनाख्त क्या होती है, बाबा ने शनाख्त भी बताई हुई है, डायग्नोसिस, जैसे डॉक्टर लोग जानते हैं ये दवाई आप खाओगे तो आपका गला तो ठीक हो जाएगा, टांगों में हो सकता है शायद थोड़ा ज्यादा दर्द हो जाए, बुरा खराब, इसको बुरा नहीं मनाना, ख्याल नहीं करना, ठीक हो जाएगा। तो क्या क्या उससे होगा और क्या क्या बीमारी के सिम्टम्स होते हैं बाबा ने बताए हुए कि आलस जो है वो धीरे धीरे शिव बाबा से हटा देगा। कैसे हटा देता है, आज आप नहीं उठेंगे योग में, कहेंगे बहुत ठंडी है, आज रजाई में प्यार आ रहा है, थोड़ा उसमें लेटे रहते हैं लपेट के, तो कल और पक्का होगा कि फिर हम जब योग लगाएंगे तो अच्छी तरह से 4 घंटे, 2 घंटे की बजाय 4 घंटे लगा लेंगे। आदमी अपने आप को तसल्ली देता है ना, धीरे धीरे वो योग का रस ही खत्म हो जाएगा, साधना ही खत्म हो जाएगी, शिव बाबा से ही आप हट जाएंगे, कहेंगे इस चीज में क्या रखा है। तो इसलिए बाबा ने कहा है कि ये जो आलस है ये धीरे धीरे शिव बाबा से दूर कर देगा, और दूर करते करते कमजोर कर देगा। नेचुरल है, जब शिव बाबा से योग नहीं लगाएंगे तो कमजोरी आएगी, और जब कमजोरी आएगी तो सब विकार फिर से आना शुरू हो जाएंगे। तो इसलिए एक दिन का भी आलस खतरनाक है, एक दिन का, क्योंकि एक दिन अगर आपने आलस किया तो फिर आदत पड़ जाएगी। कर्म कोई भी किया जाता है तो उसका सबसे बड़ा खतरा यह होता है कि फिर रिपीट करने का मन करता है, और अगर आपने 2 दफा कर लिया, 3 दफा कर लिया तो आदत बन गई। किसी ने कहा है कि धागों का बना रस्सा उसका टूटना मुश्किल, जो आदत हो गई पक्की उसका छूटना मुश्किल। धागा आप तोड़ सकते हो लेकिन धागों का रस्सा बना लो उसको तोड़ना मुश्किल है, और आदत जो है वो भी कई कर्मों से, कई दफा रिपीट करने से आदत पक्की हो जाती है, उसको भी रस्से की तरह से तोड़ना मुश्किल है। तो एक दफा अगर आपने आलस कर लिया, अपनी साधना में विघ्न आना स्वीकार कर लिया, डिफीट मान ली माया से जो सूक्ष्म रूप में आई, तो फिर आपको वो चारों शाने चित कर लेगी, आदत पड़ जाएगी, आदतों के गुलाम जैसे पहले थे वैसे ही बन जाएंगे। तो कभी भी पहले पहले जब आलस आती है या अलबेलापन आता है उसका हमें सतर्क रहना चाहिए, हमारा दुश्मन कौन है। बाबा ने बताया हुआ आपका कोई भी मनुष्य, नर नारी कोई भी आपका दुश्मन नहीं है।
आपके बुरे कर्म, बाबा ने पिछले दिन क्या कहा था, आपके अच्छे कर्म आपका सबसे बड़ा खजाना है, बताया था ना। तो क्या मतलब हुआ कि हमारे जो खराब कर्म है वो सबसे बड़े हमारे शत्रु है, हमारा नुकसान वही करने वाले। और ये आलस जो है ये हमें अच्छा कर्म करने से, साधना से, शिव बाबा से मिलने से विघ्न डालता है और विकारों को प्रवेश होने के लिए रास्ता खोलता है। आपको मालूम होगा मोहम्मद गौरी का और राणा भीम सिंह का जब आपस में इतिहास में वो सोमनाथ को लेकर जो लड़ाई हुई थी, उसमें एक व्यक्ति था मंदिर का पुजारी जिसने जाके दरवाजा खोल दिया था, उसने वही सारी हार का कारण बना था। और तब से लेके मुसलमानों ने प्रवेश किया और ये देश 1000 साल तक गुलाम, उससे भी ज्यादा गुलाम रहा। तो ये आलस है दुश्मन को दरवाजा खोलने वाला, समझ लो आप। चाहे आपसे ये लड़ेगा नहीं लेकिन ये दुश्मन को दरवाजा खोल देगा। तो इसलिए लगता बड़ा मीठा है ये, उस वक्त ऐसा लगेगा कोई फर्क नहीं पड़ता, कल से फिर शुरू कर लेंगे। जैसे हम कहते हैं शराब को हाथ नहीं लगाना, अफीम, भंग, चरस, किसी चीज को हाथ नहीं लगाना। जैसे खराब चीज है शराब, वैसे ही अफीम भी खराब चीज है। तो क्रोध जो है वो एक शराब है, अभिमान जो है वो एक शराब है, अभिमान का नशा है। अगर कोई शराब नहीं पीता, अभिमान करता है, तो समझो वो सूक्ष्म शराब पीता है। वो नहीं कह सकता जी मैं शराब नहीं पीता, क्योंकि उससे भी मनुष्य इंटॉक्सिकेटेड होता है। ऐसे ये जो आलस है ये अफीम है। वो शराब वाला तो ऊंचा ऊंचा बोलता है और आलस वाला कहता है जो अफीम खाता है वो क्या करता है, नहीं जाता। अफीम ची ऐसे बोलता है ना, आलस वाला भी ऐसे ही करता है। तो ये जो आलस है ये एक प्रकार का अफीम है। अगर आप समझते हैं कि हमें अफीम नहीं लेनी चाहिए तो आलस से दूर रहो हमेशा, ये सबसे बड़ा शत्रु है। तो इसलिए बाबा ने कहा हुआ है कि ये जो आलस है ये विकारों का द्वार खोल देगा और ये आपको साधारण बना देगा, कमजोर कर देगा, और बाकी सब विकार आना आप में शुरू हो जाएंगे, ये पक्की बात समझ लो। योग में बैठते हैं, सुबह को भी योग में बैठते हैं, मान लो अगर उसमें नींद का हल्का सा भी वो है तो बजाय योग करने के नमाज पढ़ते हैं, तो योग तो ना पढ़े, योग तो नहीं कर रहे तो नमाज पढ़े। तो वो जहां पर भी ये बाबा कहता है छठा विकार है सुस्ती, आलस। तो अलर्ट होके, एक्टिव होके, जो कमाई का टाइम है, बाबा कहता है यू आर एट वार विद माया, माया से आपकी लड़ाई है। अब हमारे सिपाही अगर बॉर्डर पर खड़े हुए हैं दुश्मन का सामना करते हुए, गोलियां चल रही हैं और वो सोए पड़े हैं, पहरेदारी अगर सोए पड़े हों तो क्या नतीजा होगा, आप सोचिए। बैठे हैं योग में और इस समय बाबा से योग लगा के लाइट और माइट लेके सारे संसार को देनी है, तत्वों को भी बदलना है, हमारी इतनी बड़ी जिम्मेवारी है और हम झुटके खा रहे हैं, झटका तो नहीं खाते, झुटका खाते, बात एक ही हो गई। तो उसका ध्यान हम दें कि लाइफ में हमारे वो सुस्ती और अलबेलापन ये ना है। तो दूसरा मैं कह रहा था कि अलबेलापन, अलबेलापन का क्या मतलब होता है, क्या आपने सोचा जैसे टाल मटोल की जाती है, कल कर लेंगे, परसों कर लेंगे। बाबा ने क्या कहा है, पद्मा पद्म कमाई होती है, इतनी ज्यादा कमाई जिसकी होती हो एक दिन में तो नहीं हो जाती। संगम युग में प्रतिदिन आप अपनी कमाई जोड़ते हैं तब आप पद्मा पद्म भाग्यशाली बनते हैं। तो जिसकी कमाई इतनी जबरदस्त हो उसकी एक दिन भी की कमाई भी कितनी कमाई होगी, आप सोचिए। तो एक दिन की इतनी कमाई को अगर आप कम कर देंगे तो फिर आपका जो नेट रिजल्ट होगा, फाइनल जो आपका बैलेंस शीट होगा, उसमें कितना घाटा आपको पड़ जाएगा, तो ये हमें सोचना चाहिए। तो बाबा ने एक मुरली में कहा था, वो मैं रिपीट करता हूं, बाबा के शब्द बहुत ही मर्मस्पर्शी हैं। बाबा ने कहा था तुम्हारा परिवर्तन सृष्टि को परिवर्तन में लाएगा। देखिए कितनी रेस्पॉन्सिबिलिटी है हमारी, बाबा हमसे क्या उम्मीद रखते हैं। बाबा ने कहा था बच्चे तुम्हारा परिवर्तन सृष्टि को परिवर्तन में लाएगा। सृष्टि का परिवर्तन भी आप श्रेष्ठ आत्माओं के लिए रुका हुआ है। ये कितनी बड़ी गफलत होगी, हमारा अलबेलापन या आलस होगा। जैसे मान लो कोई 20 आदमियों ने गाड़ी पर चढ़ना है, बस तैयार खड़ी है, 19 आदमी बैठ गए हैं, एक आदमी की वजह से वो बस रुकी हुई है और सारे आदमी गाड़ी से रह जाएंगे, तो सब लोग उसको बुलाते हैं, भाई बैठो बैठो गाड़ी से हम रह जाएंगे सारे के सारे। होता है ना मधुबन में, वो बाहर बस ठहरती है और कोई कहता है मैं अभी आता हूँ 2 मिनट में भोली बहन जी से, वहां से अपना भोजन लेकर आ रहा हूँ, और सारे बस रुकी हुई है और जिनकी गाड़ी जल्दी जाती है उनका दिल धक धक कर रहा होता है। अगर बनारसी भाई जाके उनका हार्ट चेक करे तो उस वक्त उनका हार्ट बीट तेज होगा। वो बेचारे ये सोच रहे होते हैं हमारी गाड़ी मिस हो जाएगी, और वो अपना जाके अपना मजे मार रहे हैं, भोजन पैक कर रहे हैं, पहले से नहीं ख्याल करते। तो ये तो एक छोटी सी बात है, चलो एक गाड़ी नहीं मिले शायद दूसरी भी गाड़ी मिल जाए, लेकिन इसके लिए तो बाबा कहते हैं नाउ आर नेवर, अब नहीं तो कभी नहीं। तो बाबा ने क्या कहा हुआ है, जब किसी की व्यक्ति की रिस्पांसिबिलिटी होती है, जिम्मेवारी होती है, अगर आपके जिम्मे किसी के लग जाए कि आप सारा हाल तैयार करो, ये जो सारे सोफाज वगैरह हैं ये इधर उधर सब बिखरे पड़े हों, ठीक तरह से सेट ना हुए हों, आप सेट हों, और आपके जिम्मे कोई लगा दे 11 बजे क्लास होनी है, जरा इसको जल्दी जल्दी सेट करा दो, तो आप उस दिन नाश्ता कैसे करोगे जल्दी जल्दी, ताकि 10 मिनट सेव करके मैं वहां जाऊं, मुझे सारी तैयारी करनी है, वहां पर लोगों ने आना है, उसके पहले सब काम तैयार हो जाए। जिम्मेवारी वाले चाहे नहीं करेंगे नाश्ता, आपको लोग कहते रहेंगे नाश्ता तो कर लोगे, आप कहेंगे नहीं भाई मेरी जिम्मेवारी है, सबने आना है, क्लास शुरू होनी है, मेरे को टाइम लगेगा, पहले मैं अपना काम करूंगा पीछे बात करूंगा। तो बाबा ने इतनी बड़ी जिम्मेवारी हम आत्माओं के ऊपर, और कितने प्यारे शब्दों में, आप श्रेष्ठ आत्माओं, हम अपने आप को कुछ क्या भी समझें, लेकिन बाबा हमें क्या कहते हैं, मीठे बच्चे, प्यारे बच्चे, सिक्की लदे बच्चे, लाडले बच्चे, ऐसा कोई बाप होता है जो इस तरह से कहे? कोई टीचर हो, कोई बाप हो, वो कोई शिक्षा दे और आप ना मानो तो आपसे थोड़ा सा वो माथे पर तेवड़ी चलाएगा, अरे मैंने आपको इतना समझाया फिर भी आप उल्टा काम करके आए, तो चलो कोई बात नहीं, अब आगे के लिए ठीक करना, फिर आपको दोबारा समझाता है, फिर आप उल्टा करके आते हैं, फिर कहते हैं अरे भाई तुम कैसे आदमी हो, फिर तीसरी दफा समझाता है, फिर चौथी दफा समझाता है, 10 दफा समझाता है, उसके बाद कहता है मेरा दिमाग क्यों चाटते हो, भागो यहां से, मेरे को और भी कुछ काम करना है या तुम्हें ही समझाता रहूंगा, गेट आउट फ्रॉम हियर, बोलता है ना, तुम रोज रोज मेरा दिमाग खराब करते हो, करते हो नहीं अपनी मर्जी की करते हो, और फिर मेरे पास आ जाते हो, आई हैव एब्सोल्युटली नो रेस्पॉन्सिबिलिटी। लेकिन ये बाप, ये शिक्षक, ये सदगुरु हमें कैसे मिला है, हर मुरली में कहता है बच्चे आत्माभिमानी बनो, बच्चे सोल कॉन्शियस बनो, बच्चे स्वरूप में निश्चय रखो, फिर भी हम नहीं रखते, अभी बने हैं पूरी तरह से सोल कॉन्शियस, फिर भी कहता है मीठे बच्चे, सिक्की लदे बच्चे, ये नहीं कहता भाग जाओ यहां, कितने हजारों दफा मुरली में कहा होगा, कितनी मुरलियां आज तक, इतने वर्ष 36 से लेकर अब तक कितनी मुरलियां हैं, और हर मुरली में कई दफा कहते हैं बाबा सोल कॉन्शियस बनो, फिर भी हम नहीं बनते, फिर भी कहता है मेरे नूरे चश्मा, मेरे प्यारे रतन, मेरे अनमोल रतन, मीठे बच्चे, सिक्की लदे बच्चे, और फिर क्या कहता है मेरे श्रेष्ठ बच्चे। ऐसा बाप हम पर हुज्जत रखता है, प्यार से हमें कहता है कि बच्चे तुम्हारी वजह से ये सारा सृष्टि के परिवर्तन का काम रुका हुआ है। बाबा ने एक मुरली में कहा था, कई बच्चे मेरे से पूछते हैं बाबा विनाश कब होगा, तो मैं उनसे पूछता हूं कि आप बताओ आप तैयार हो, मैं ये पर्दा हटाऊं कलयुग का और सतयुग का सीन सामने आए, तुम तैयार हो, अगर कोई ड्रामा होना हो और जो कर्टन वाला है कर्टन को पुल कर दे, पर्दे को खींच ले, और अंदर कोई पजामा पहन रहा हो, कोई कुर्ता पहन रहा हो, कोई आंख में काजल डाल रहा हो, कोई कुछ कर रहा हो, तो सब लोग कहेंगे क्या करता है भाई, है कि नहीं, तो ड्रामा तो तब, पर्दा तो तब खींचा जाता है जब सब तैयार हो। तो बाबा कहता है कि आप तैयार हो जब मैं सतयुग का पर्दा करूं, हैं? और तैयारी किसकी वजह से रुकी हुई है, हम बच्चों की वजह से, जब हमारी वजह से, क्या हमारे मन में आना नहीं चाहिए कि बाबा हमें इतने मीठे इतने प्यारे बच्चे कहते हैं, हम भी कहें हमारे मीठे बाबा, हमारे प्यारे बाबा, हमारे सिक्की लदे बाबा, आप हमसे यही आशा करते हो, हम आपको ऐसा बन के दिखाएंगे इस तपस्या वर्ष में, ये आलस, ये अलबेलापन नहीं आने देंगे, हमारी वजह से अगर ये सृष्टि का परिवर्तन रुका हुआ है तो हमें नहीं आना चाहिए कि ओहो ये क्या हो गया, हमारी वजह से सब रुके हुए हैं, सारा सतयुग आना रुका हुआ है, और मैं आंखों में काजल ही डालने में लगा हुआ हूं, सोचो ना क्या ड्यूटी है। वो ड्यूटी का जब आदमी को ख्याल आता है तो फिर ये आलस और अलबेलापन भाग जाता है। इसके लिए ये बाबा का महावाक्य आपको बताया कि आलस और अलबेलापन भागे कैसे, नहीं तो लगन रहेगी नहीं, मगन होंगे नहीं, और तपस्या। बाबा ने एक मुरली में कहा कि कई बच्चे कहते हैं अच्छा देखेंगे सोचेंगे, ये भी आलस की निशानी है। कोई भी प्रोग्राम बनता है उसमें जी जान लगा के पूरे मन से उसको करना, ये है कि आलस बिल्कुल ना हो। आलस बिल्कुल ना होने का ये भी एक निशान है, वरना अगर थोड़ापन ढीलापन होगा, चलो योग में तो बैठे लेकिन उतने अलर्ट होकर नहीं बैठे, उतनी रुचि से नहीं बैठे, अपनी इच्छा से नहीं बैठे, और एकदम उससे खजाना भरने के लिए हम तैयार होकर नहीं बैठे, ये भी आलस है। आलस का सिर्फ ये मतलब नहीं कि क्लास में आप नहीं आए, या आप आगे क्लास में अपना हाजिरी लगवा ली लेकिन बाबा कहते हैं कि अगर उसमें बैठे होने के बावजूद भी मन आपका आलस में है, शरीर तो आप जैसे कैसे घसीट के ले आए, लेकिन आप लाने के बाद आप विराजमान तो हो गए, तशरीफ का टोकरा तो आ गया, उसके बाद आप स्वयं कैसे है, मन आपका कैसा है? अगर मन में फिर भी आलस है तो बाबा कहते हैं ये भी आलस है। और आलस तब आता है जब पहले अलबेलापन आता है। आलस पहले नहीं आता, पहले अलबेलापन आता है, गफलत आती है। आदमी को उस चीज का मूल्य नहीं होता। जब मूल्य नहीं होता तो अलबेला होता है, अलबेला होता है तब आलस आता है, आलस पहले नहीं आता। और जब आलस आता है तो कमाई खत्म हो गई। तो इसलिए बाबा ने ये कहा है कि ये नहीं सोचो अच्छा देखेंगे सोचेंगे, ये भी आलस की निशानी है। फिर एक मुरली में बाबा ने ये कहा कि अगर कोई विघ्न नहीं है, दो परिस्थितियां मनुष्य के जीवन में होती हैं, एक तो ये कि कोई विघ्न हमारे सामने ना हो, एक ये कि कोई विघ्न हमारे सामने हो, दोनों में से एक बात होगी। तो बाबा कहते हैं कि अगर कोई विघ्न आपके सामने ना हो और फिर भी आप पुरुषार्थ आपका तीव्र ना हो तो ये भी आलस है। इसका मतलब ये है कोई विघ्न नहीं है, आपके रोज का जो जीवन जैसे चलता है ठीक चल रहा है, और फिर भी अगर आप पुरुषार्थ नहीं करते तो बाबा ने कहा कि विघ्न ना हो और पुरुषार्थ भी श्रेष्ठ ना हो, ये भी आलस की निशानी है। समझो यहां भी आलस है, आलस की पहचान बाबा ने हमें बताई है। और अगर विघ्न हो, फिर मैंने बताया कि बाबा कहते हैं लग्न से विघ्न समाप्त होंगे, तो फिर आप उसकी औषधि अपनाओ कि लग्न में आओ तो विघ्न समाप्त होंगे। और फिर दूसरा बाबा ने कहा हुआ है कि जैसे अंधकार को आप कैसे भगाते हैं प्रकाश से, जब आप लाइट को स्विच ऑन करते हैं तो अंधकार खत्म हो जाता है, तो इसी तरह से बाबा ने कहा हुआ है कि आलस को कैसे भगाओगे, उल्लास से। आलस जो भागेगा वो उल्लास से भागेगा। अगर आपके मन में आलस नहीं है तो समझो कि उल्लास नहीं है, आलस है अगर तो समझो कि उल्लास नहीं है। जब आपके मन में उल्लास आएगा तो आलस समाप्त हो जाएगा। अब उल्लास कैसे है ताकि आलस ना आए हमारे में, उल्लास आएगा तो आलस नहीं आएगा ना, तो उल्लास कैसे है? तो कई दफा जब हम अपने में आत्मविश्वास सेल्फ कॉन्फिडेंस खो बैठते हैं तो बाबा ने कहा है कि कई दफा कई बच्चे ये सोचते हैं हमारे संस्कार तो चेंज हो नहीं रहे, योग की ज्वाला जो प्रकट होनी चाहिए, जो बिंदु रूप स्थिति हो, बीज रूप अवस्था हो, वो तो हमारी बन नहीं रही। शायद पता नहीं हमारा पार्टी कोई हल्का सा है या ढिल्लम डाला है, तो ऐसा सोच के वो अपने में निराशा कर लेते हैं, उससे जो है उल्लास कम हो जाता है। तो बाबा ने मुझे चुना है, ये हमेशा याद रखो कि बाबा ने मुझे चुना है, करोड़ों आत्माओं में से बाबा ने मुझे चुना है, बाबा की सिलेक्शन रांग नहीं हो सकती। बाबा ने मुझ में उम्मीद रखी है, मैं उम्मीदों का तारा हूं जो बाबा ने कहा हुआ है। ये जब अपने में सोचोगे तब आएगा कि जरूर बाबा के पास मेरे लिए कोई प्लान है, अभी नहीं है तो आगे चल के कुछ कार्य मेरे से होने वाला है, तभी बाबा ने मुझे चुना है, मैं विशेष आत्मा हूं। और फिर बाबा ने कहा है कि ये सोचो कि हम अनेक बार के विजयी हैं। पिछले दिन भी मुरली में था, बाबा ने अव्यक्त वाणी में बाबा कह रहे थे ना कि सब समझते हो कि हमने पहले भी ये हम देवी देवता थे, हमने इन विकारों को जीता था। दादी जी कह रही थी कि आप में से जो जिनको ये होता होगा कि हाँ वही है कल पहले वाले जो विजय प्राप्त करने वाले, तो ये हमेशा सोचो कि हम अनेक बार के विजयी हैं और विजयी होके दिखाएंगे, तब आप में कॉन्फिडेंस बिल्डिंग होगी, आप में विश्वास बढ़ेगा अपने में। और जब आप में आत्मविश्वास बढ़ेगा उल्लास बढ़ेगा, और जब उल्लास बढ़ेगा तो आलस भाग जाएगा, और जब आलस भाग जाएगा तब लगन में मगन होंगे, वो विघ्न समाप्त होगा। ये है उसकी सारी प्रक्रिया, उसके लिए बाबा ने कहा हुआ है। इसके अलावा बाबा ने यह कहा हुआ है कि हमेशा ये सोचो कि मैं आधार मूर्त हूं और उद्धार मूर्त हूं। उधार मूर्त नहीं, उधार लेकर खाने वाले कई होते हैं, उधार मूर्त नहीं, उद्धार मूर्त, दूसरों का उद्धार करने वाला। तो बाबा ने कहा है कि हमेशा ये सोचो कि अब जैसे कोई आधार हो, किसी के ऊपर हम डिपेंड कर रहे हो, वही अगर हमें फेल कर दे तो हम कहेंगे भाई तुम कैसे आदमी हो, हम तो आप पर डिपेंड कर रहे थे, आपने अंत में आके हमारा भट्टा ही बिठा दिया, हमें गलत धोखे में रखा। तो बाबा कहते हैं कि ये जो सतयुग की सृष्टि है उसके पिलर आप हो, किसी बिल्डिंग के जो पिलर बनाए जाते हैं, अगर वो बिल्डिंग पक्की होनी है तो पिलर्स मजबूत होने चाहिए। तो हम आधार मूर्त हैं और उद्धार मूर्त हैं। अगर अपनी इतनी रेस्पॉन्सिबिलिटी आप सोचेंगे कि हम जो आत्मा हैं सारी सृष्टि में से सतयुग की सृष्टि के आधार बनने वाले हम लोग हैं, और अनेकों का हमारे द्वारा कल्याण और उद्धार होना है, तो फिर हम कैसे सोए पड़े, कैसे हम गफलत में हैं, हम आलस कैसे कर सकते हैं। तो जिसको ये ख्याल होता है अपनी ड्यूटी का, रिस्पांसिबिलिटी का, अपने कंसर्न का, तो वो कार्य करता है। तो ये सोचो हमेशा, फिर आलस भाग जाएगा। दूसरा नेचुरल है, जो आलस करता है, अलबेलापन करता है, उससे सबसे बड़ा जो नुकसान होता है वो ये होता है कि टाइम वेस्ट जाता है। उस टाइम में कोई कमाई तो हुई नहीं, चलो कोई नेगेटिव थिंकिंग और ना हुई, आलस का संस्कार तो पक्का हुआ, लेकिन उसके साथ साथ टाइम वेस्ट गया। तो बाबा ने ये कहा हुआ है, कभी भी आलस अगर आता है तो ये सोचो कि जो समय को मूल्य नहीं देते वो मूल्यवान नहीं बन सकते, जो समय को मूल्य नहीं देते वो मूल्यवान नहीं बन सकते। सतयुग का जो भी देवी देवता हैं, पद्मा पद्म भाग्यशाली, बाबा कहते हैं डायमंड जैसे सब चीजों में से ज्यादा मूल्यवान होता है वो, उसके समान गोल्डन एज है, गोल्ड वैल्यूएबल चीज है। और ये जीवन हमारा ब्राह्मण जीवन भी डायमंड के समान है, वो इस वजह से कि हम कमाई करते हैं डायमंड्स के से भी ज्यादा मूल्यवान। तो समय को अगर कोई मूल्यवान नहीं देता तो वो मूल्यवान नहीं बन सकता। तो अगर ये सोचोगे तो फिर आपको ख्याल आएगा कि मैं उठ के कार्य करूं, ये साधना करूं, योग में रहूं, लगन में मगन हूं, ये मेरा टाइम वेस्ट जा रहा है, मेरा जीवन मूल्यवान कैसे बनेगा। तो इसमें कई दफा बाबा ने कहा कि आपने कौन सा जन्म लिया है, जो जन्म अभी लिया है जो ब्रह्मा के मुखारविंद से, ईश्वरी ज्ञान से, इसको हम अलौकिक जन्म कहते हैं। अलौकिक जन्म लेके भी लौकिक काम करोगे तो फिर अलौकिक जन्म लेने का फायदा क्या। अपने को समझाने के तरीके होते हैं ना, तो अपने आप को समझाओ कि मैं आलस कर रहा हूं। तो बाबा ने कहा कि आलस जो है वो आपके जीवन को लौकिक बना देगा, कामन बना देगा, साधना से आपका जीवन अलौकिक बनेगा और आलस आपके जीवन को लौकिक बना देगा। तो तब अपने में ये विषमता हो जाएगी, ये कंट्रडिक्शन हो जाएगा। तो अपने को, मन को समझाओ कि ये आलस तो मेरे जीवन को कामन, साधारण जीवन बना रहा है, साधना के जीवन बनाने की बजाय साधारण जीवन बना रहा है, और अलौकिक बनाने की बजाय लौकिक बना रहा है। तो बाबा कहते हैं फिर अलौकिक जन्म ही किस लिए लिया, अलौकिक जीवन जन्म लेने का फायदा ही क्या हुआ। अलौकिक जीवन लेके भी अगर साधारण जीवन जिया, आलस का, अलबेलेपन का, सुस्ती का, योग को छोड़ के अगर बैठ गए तो फिर क्या फायदा हुआ। और जो मैं कह रहा था कि आत्मविश्वास की कमी हो जाती है, मनुष्य समझता है जैसे चल रहे हैं वैसे ही ठीक है, हमारा शायद यही पार्ट है, इतना ही काफी है, कुछ तो बन जाएंगे, दलिया ना सही दाल ही सही, कहते ना दाल या दलिया कुछ तो बन ही जाएंगे। ऐसा सोच के जो चलते हैं, जो कई दफा जैसे आज भी था कि कोई अधम बन जाते हैं, चलते चलते फिर अधम बन जाते हैं, हार खा बैठते हैं माया से, फिर मन उनका खाता है अंदर से कि ये क्या हो गया, हम आए थे कमाई करने के लिए, फिर हमने क्या कर लिया, अपना नुकसान कर लिया। तो उसके लिए जो बाबा ने युक्ति बताई हुई है, औषधि बताई हुई है, बाबा ने बहुत थोड़े शब्दों में कहा है, बलिहार जाओगे तो हार नहीं होगी। जिनकी हार हो जाती है किसी भी अपने पुराने संस्कार से हार हो जाती है, तो उसका उपाय बाबा ने क्या बताया हुआ है कि बलिहार जाओगे तो हार नहीं होगी। अगर बाबा पर बलिहार जाओगे, कुर्बान जाओगे, पहले भी एक दफा बाबा ने कहा था कि मोहब्बत करोगे तो मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, अगर बाबा से प्रीत पूरी जोड़ोगे, बाबा मैं आपका हूं, बाबा आप मेरे हैं, इतना अपना नजदीकीपन समझोगे तो बाबा आपकी इतनी मदद करेगा कि फिर आपको जो बार बार ऊपर चढ़ने की मेहनत करनी पड़ती है, फिर गिर जाते हैं, वो नहीं करनी पड़ेगी, बाबा आपको पूरा सहयोग देगा। अगर हार हो जाती है तो समझो अभी बाबा पर पूरी तरह से बलिहार नहीं है, इसलिए बाबा ने सावधान किया है कि बलिहार जाओ तो फिर हार नहीं होगी। और दूसरा बाबा ने कहा था कि पोजीशन छोड़ते हो तो पावर कम हो जाती है, जब विकारों से हारते हैं, हारते क्यों हैं, पावर कम होती है, कोई संस्कार हमारा पुराना खराब, कलयुगी, तमोगुणी, आसुरी, वो प्रबल है, बलवान है, और हमारी पावर उसके सामने कम है तो हार खा बैठते। तो बाबा कहते हैं कि पोजीशन छोड़ देते हो तो पावर कम हो जाती है। जैसे आजकल आज कोई प्राइम मिनिस्टर है, रिजाइन कर दिया, पोजीशन छोड़ दी, फिर उसको कोई पूछेगा, वो पिछले दिन राजू भाई बता रहे थे ना कि ऐसे मिनिस्टर होते हैं, जब मिनिस्टर होते हैं तो लोग उनको सब आके पूछते हैं, सलाम करते हैं, और जब मिनिस्टर नहीं रहते तो कोई भी नहीं पूछता, बता रहे थे ना कि हम ऐसे मिनिस्टर नहीं बनना चाहते, अपना अनुभव सुना रहे थे वो, क्यों, क्योंकि पोजीशन, जब तक कुर्सी है पोजीशन है तब तक पावर है, पोजीशन छोड़ी तो पावर खत्म हो गई, फिर उनको कोई प्राइम मिनिस्टर थोड़ी कहेगा, फिर कहेगा एक्स प्राइम मिनिस्टर, भूतपूर्व, फिर तो भूत हो गया ना वो, वर्तमान तो रहा नहीं। तो इसलिए बाबा ने हमें ये समझा दिया हुआ कि अपनी पोजीशन मत छोड़ो, मैं आत्मा हूँ, अपने स्वरूप में टिको, मैं ब्राह्मण हूँ, मैं ब्रह्मा मुखवन शावली हूँ, मैं होनहार देवी देवता हूँ, मैं नरसे नारायण बनने वाला हूँ। और बाबा ने कितने टाइटल्स दिए हैं, बाबा ने कहा कि कितने भी टाइटल्स संसार में किसी के हों, आप जितने टाइटल किसी के नहीं हो सकते, इतने बाबा ने दिए हुए श्रेष्ठ टाइटल्स। वो अपने सोचोगे तो नशा चढ़ेगा, कुमारी आएगी, मस्ती आएगी और ये आलस अलबेलापन खत्म हो जाएगा,
बेलापन।
तो इन चीजों से उमंग और उत्साह बना रहेगा तो लगन में मगन हो सकेंगे। तो इसको बाबा ने भिन्न भिन्न रीत से कहा है, पोजीशन को छोड़ोगे तो पावर कम हो जाएगी और फिर माया अटैक करके आपको अपने काबू में कर लेगी इत्यादि। एक मुरली में बाबा ने कहा था कि लकीर से बाहर निकलोगे तो फकीर बन जाओगे। थोड़े थोड़े शब्दों में बाबा कितनी एक रिमार्केबल, एक इतनी महत्वपूर्ण बात कहते हैं, लकीर से बाहर निकलोगे तो फकीर बन जाओगे। तो ये जो बाबा ने लकीर खींच दिया है हमें, हमारे लिए मर्यादा की, श्रीमत की, उसको छोड़ते हैं हम तब फकीर बनते हैं। याद की बजाय फिर फरियाद करने लग जाते, ज्ञान की बजाय फिर भक्ति में आ जाते। इसमें एक तो हम लकीर का ख्याल रखें कि हम लकीर में रहें ताकि फकीर ना बने, लगन में मगन रहें, याद की यात्रा हमारी चलती रहे, संबंध हमारे बाबा से जुटे रहें, कनेक्शन हमारा बाबा से बना रहे, टेलीफोन हमारा खराब ना हो और ऐसा ना हो ट्रंक कॉल बुक कराना पड़े, बल्कि डायरेक्ट डायलिंग हो, होता है ना आजकल डायरेक्ट डायलिंग, और या हॉट लिंक जिसको कहा जाता है, जैसे रशिया और अमेरिका का आपस में आबू रोड और आबू माउंट का हमने पहले लिया हुआ था, उसमें क्या होता है कि हर वक्त वो चालू, जिस वक्त भी आप फोन करना चाहें उसी वक्त आपको मिल जाए। जो डायरेक्ट डायलिंग का सिस्टम है वो भी अगर वो बिजी होगा लाइन तो शायद आपको ना मिले, लेकिन ये तो हर वक्त मिल जाए, जिस वक्त भी आपके लिए इजी हो जाए शिव बाबा से कनेक्शन जोड़ना। तो बाबा ने कुछ समय पहले एक मुरली में एक का महत्व तो बताया था, और तपस्या का विशेष भाव ये है कि एक की लगन की मगन में हम मग्न रहें। तो उसमें जो बाबा ने एक का महत्व तो बताया था, एक तो बाबा ने कहा था एक नामी, एक नामी, उस एक शिव बाबा की याद में रहना, एक की महिमा करना, एक से सब संबंध जोड़ना, एक नामी। जो ज्यादा बाहर मुक्ता में जाना, वाणी में ज्यादा जाना, ज्यादा बखेरों में पढ़ना, बल्कि बाबा ने एकांत शब्द का जो हमें अर्थ बताया हुआ है, संसार से भिन्न, एक बहुत ही अच्छा कि अगर ढोल बजते भी हों, आवाज कहीं हो भी सही, तो भी हम उस एक बाबा की याद में टिक जाएं, एक के अंत में चले जाएं, बजते भी हों, आवाज कहीं हो भी सही, तो भी हम उस एक बाबा की याद में टिक जाएं, एक के अंत में चले जाएं, तो ये एकांत है। चाहे बाहर से भीड़ भड़क्का भी हो, लेकिन उसमें होते हुए भी हम अगर अपने मन के पुरुषार्थ से, योग से, एक के अंत में टिक जाएं, तो हम अपने एकांत का सेवन कर सकते हैं, बशर्ते के हमारा उस स्थिति से प्यार हो, लगन हमारी ये हो कि हमने वैसा बनना है। तो इसलिए बाबा ने कहा था एकांत प्रिय, तपस्या पूरी ढंग से नहीं हो सकेगी अगर एकांत प्रिय नहीं होंगे। बाहर के लोग जो हैं बाहर मुखी हैं, सब कुछ इंद्रियों के द्वारा वो करते कराते हैं। आप विदेशों में जाएंगे कुछ ना कुछ करते रहेंगे, उनको को अच्छा पालती मार के बैठोगे तो कहेंगे अच्छा बैठ के फिर क्या करे, वो समझ उनको अकेला खाली बैठना आता ही नहीं, क्योंकि उसका रस ही नहीं। रेडियो ऑन कर लेंगे, टीवी ऑन कर लेंगे, कुछ इंडोर गेम खेलना शुरू कर देंगे, कोई आइसक्रीम निकाल के खाना शुरू कर देंगे, कोई भाई को दोस्त को बुला के गप लगाना शुरू कर देंगे, कुछ ना कुछ करेंगे। लेकिन ये इससे अलग होके, सब कर्मों से अलग होके एक और भी कुछ करना होता है, ये विधि उनको नहीं आती। तो बाबा ने हमें ये बताया है एकांत प्रिय बनने का, कि कैसे बैठ के हम अपने एकांत में चले जाएं। और एक रस, एक का महत्व तो बाबा ने ये भी बताया, एक रस स्थिति, वरना अनेक प्रकार के रस मनुष्य लेता है ना, अभी जूस पी लो, अभी चाय पी लो, अभी टॉफी खा लो। किसी ने किसी अमेरिकन से पूछा व्हाट वुड यू लाइक टू हैव, टी, कॉफी और आइसक्रीम। कहता है टी राइट नाउ, कॉफी आफ्टर सम टाइम, आइसक्रीम जस्ट बिफोर लीविंग। तो वैसे ही हमारा हिसाब है, जो मनुष्य इंद्रियों के हैं, अभी कुछ सुनने को मन करता है, अभी कुछ खाने को मन करता है, अभी कुछ बात करने को मन करता है, तो इंद्रियों के गुलाम, इंद्रियों के वशीभूत। कहते हैं ना भाई 3 इंच की जबान है या 2.5 इंच की, किसी की छोटी बड़ी होती होगी, और 6 फुट का आदमी और इतनी छोटी सी सिगरेट के गुलाम या किसी भी जो भी संसार में विषय पदार्थ विषय भोग हैं उनके अधीन। तो लेकिन बाबा ने क्या कहा हुआ है, एक रस। ये जो मूड चेंज होते हैं बार बार, मूड चेंज मत करो। अभी नाराज हैं, अभी गुस्से में हैं, अभी टेंशन में हैं, और अभी ओम शांति करो तो कहेंगे ओम शांति, क्योंकि मूड चेंज हुआ हुआ है। तो वो मूड बदलते रहते हैं, लेकिन एक रस हमेशा चेहरे पर कर्व ऐसे नहीं, ऐसे ये कर्व। तो वो खुशी का हमेशा चेहरा, बाबा कहते हैं यही सर्विस होगी, दिस इज द ब्यूटी ऑफ योर फेस। तो एक रस अवस्था और एकाग्रता, जो तपस्या का मेन पुरुषार्थ है हमारा, क्या है कि हम बिंदु रूप पर अपने मन को एकाग्र करें, शिव बाबा की याद में मन को एकाग्र करें, अपने स्वरूप में मन को एकाग्र करें, शिव बाबा के जो गुण हैं उनके स्वरूप के मनन करते करते उस रस में टिक जाएं। वो एक रस स्थिति हमारी तभी होगी जब एकाग्रता होगी। और इकोनॉमी, एक नाम ही पहले मैंने बताया, फिर इकोनॉमी। इकोनॉमी का क्या मतलब कि बचत। टाइम को भी जहां कम खर्च होता हो कम खर्च करो, पैसा भी कम खर्च करो, एनर्जी भी कम खर्च करो, कोशिश करो फालतू ना जाए। वेस्ट को बेस्ट बनाना है, ना कि बेस्ट को वेस्ट करना है। तो जहां पर कोई चीज की बचत हो सकती है, यही हमने देखा कि बाबा कहते थे साकार में, हम जब बाबा से मिलते थे, कि बाबा इकोनॉमी का अवतार है, इकोनॉमी का अवतार है। यानी देखना हो कम खर्च बाला नशीन कैसे होता है, थोड़ा खर्च करके उत्तम से उत्तम रिजल्ट कैसे हो सकता है, वो साकार बाबा से कोई सीखे। तो डोंट वेस्ट यूर वॉयस, डोंट वेस्ट यूर एनर्जी, यूर फिजिकल एनर्जी, मेंटल एनर्जी, स्पिरिचुअल एनर्जी, जो आपकी मानसिक शक्ति, शारीरिक शक्ति, आत्मिक शक्ति, उसका अपव्यय मत करो, दुर्व्यय मत करो, उसका वेस्टेज मत करो। और फिर उसके अलावा एकता, जो अपना दैवी परिवार है उसकी एकता, और मन वचन कर्म की भी एकता हमारी हो। शिव बाबा से भी एक से हमारी कनेक्शन जो होगा वो भी एकता। लोग अनेक में जाते हैं, सरस्वती आय नमः, ओम नमो शिवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, कभी उसका कभी उसका कभी उसका करते रहेंगे, ताकि मैंने कहा ना पहले कोई देवता नाराज ना हो जाए। लेकिन एकता हमारी उस शिव बाबा से एकता, आपस में भी एकता। संसार में लोग एकता की कोशिश करते हैं लेकिन उनको विधि नहीं आती, युक्ति नहीं आती कि एकता कैसे हो। तो ये एक का भी रहस्य बाबा ने बताया है, जिसे हमें अपने जीवन में धारण करना।